एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है आप सबका।
तो आज हम गोता लगाने वाले हैं मैल्कम ग्लैडवेल की एक बहुत ही जानी मानी किताब में, ब्लिंक, द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग।
हाँ, यानी पलक झपकते सोचने की शक्ति। ये उन पलों की बात करती है जब हम सोचते नहीं बस जान जाते हैं, वो जो गट फीलिंग होती है ना।
बिल्कुल, और आजकल की दुनिया में तो ये और भी जरूरी हो गया है ना। इतनी जानकारी, इतने फैसले हर पल।
सही कहा, मतलब कब अपनी उस पहली तेज सोच पे भरोसा करें और कब थोड़ा रुक कर सोच समझ कर चलें। ये किताब इसी गुत्थी को सुलझाने में थोड़ी मदद करती है।
तो चलिए पहले लेखक को थोड़ा जान लेते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल ये कनाडाई पत्रकार हैं, लेखक हैं, काफी मशहूर हैं।
हाँ, और दशकों से द न्यूयॉर्कर के लिए लिखते आ रहे हैं। उनकी पहली किताब द टिपिंग पॉइंट भी बहुत चली थी।
उनकी खासियत क्या है पता है? वो ना मुश्किल से मुश्किल एकेडमिक रिसर्च लेते हैं, जैसे मनोविज्ञान की या समाजशास्त्र की,
और उन्हें कहानियों में बदल देते हैं। ऐसी कहानियां जो हमें याद रह जाएं।
हाँ बिल्कुल, वो खुद साइंटिस्ट नहीं है पर वो कमाल के क्यूरेटर हैं। मतलब अलग अलग फील्ड से आर्ट हिस्ट्री, मिलिट्री, साइकोलॉजी आइडिया उठाते हैं
और उन्हें एक साथ ऐसे पिरोते हैं कि हमें एकदम नई चीज नजर आती है, एक कनेक्शन दिखता है।
उनकी किताबें भारी नहीं लगती, ऐसा लगता है कोई दोस्त कुछ मजेदार बता रहा है।
सही, और शायद यही बाहरी नजर उन्हें वो सवाल पूछने देती है जो फील्ड के एक्सपर्ट भी मिस कर जाते हैं।
अच्छा, तो अब किताब पर आते हैं। ब्लिंक, ये है किस बारे में?
सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी उस काबिलियत के बारे में है जिससे हम बहुत थोड़ी सी जानकारी से पलक झपकते ही किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। ग्लैडवेल इसे कहते हैं रैपिड कॉग्निशन,
या फिर थिन स्लाइसिंग, है ना?
हाँ, थिन स्लाइसिंग मतलब अनुभव के पतले छोटे से टुकड़े से पूरी तस्वीर भांप लेना।
किताब कहती है कि हमारा दिमाग ना पर्दे के पीछे एक सुपर कंप्यूटर जैसा है, बहुत तेजी से डेटा प्रोसेस करता है
और हमें एक एहसास देता है, एक फैसला, भले ही हमें पता न हो कि हम उस फैसले तक पहुंचे कैसे। इसे ग्लैडवेल कहते हैं अडैप्टिव अनकॉन्शियस, हमारा वो अचेतन मन जो सीखता रहता है।
लेकिन यहाँ एक पेज है, ये किताब सिर्फ तारीफ नहीं करती।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसका दूसरा पहलू भी दिखाती है, खतरनाक पहलू।
हाँ, कभी ये ब्लिंक, ये पहली छाप कमाल की सटीक होती है, जैसे कोई एक्सपर्ट नकली पेंटिंग पहचान ले।
और कभी कभी ये हमें बुरी तरह गुमराह कर सकती है, खासकर जब हमारे अनजाने पूर्वाग्रह मतलब बायसेस बीच में आ जाते हैं।
तो सवाल यही है, कब भरोसा करें अपनी गट फीलिंग पर और कब थोड़ा शक करें, रुकें।
हाँ, ये किताब इसी दोधारी तलवार को समझने की कोशिश है, एक सफर है हमारे दिमाग के इस तेज पर रहस्यमय हिस्से को जानने का।
चलिए आप कुछ कहानियों में उतरते हैं,
मजा आएगा। हु?
शुरुआत होती है गेटी म्यूजियम वाले किस्से से।
अरे हाँ, वो मूर्ति जो सही नहीं लगी कमाल का किस्सा है वो।
म्यूजियम ने एक पुरानी ग्रीक मूर्ति खरीदी, कोरोस, करोड़ों डॉलर दिए, महीनों वैज्ञानिक जांच चली, सबने कहा असली है।
लेकिन फिर क्या हुआ?
कई बड़े आर्ट एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने जिंदगी भर मूर्तियां देखी थी, उन्होंने मूर्ति को देखा और बस
एकदम से कहा कुछ गड़बड़ है ना?
एक सहज प्रतिकर्षण, मतलब एक अजीब सी फीलिंग आई।
वो बता नहीं पाए कि गड़बड़ क्या है, बस उनकी गट फीलिंग कह रही थी ये नकली है।
और आखिर में
वही सही निकले, मूर्ति नकली थी। ये दिखाता है कि सालों का तजुर्बा, वो एक्सपर्ट वाला ब्लिंक, कभी कभी साइंस और डेटा पर भी भारी पड़ सकता है। ये है थिन स्लाइसिंग का पावर।
यहीं से अध्याय एक शुरू होता है, थिन स्लाइसिंग का सिद्धांत। और यहाँ ग्लैडवेल जिक्र करते हैं मनोविज्ञानिक जॉन गॉटमैन का।
हाँ, गॉटमैन जो शादीशुदा जोड़ों पर रिसर्च करते हैं, उनका दावा तो और भी हैरान करने वाला है।
क्या दावा है?
कि वो किसी कपल को सिर्फ कुछ मिनट बात करते देखकर, सिर्फ कुछ मिनट, 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि 15 साल बाद उनका तलाक होगा या नहीं।
क्या बात करें, 90%? कैसे?
वो बातचीत के छोटे छोटे पलों में, मतलब वो थिन स्लाइस में छिपे संकेतों को पकड़ते हैं, जैसे चेहरे पर तिरस्कार का भाव आना, या एक पार्टनर का दूसरे को लगातार टोकना या नजरअंदाज करना।
अच्छा, तो ग्लैडवेल कहते हैं कि हम सब ये करते हैं अनजाने में।
हाँ बिल्कुल, लोगों से मिलते हैं और सेकेंडों में एक राय बना लेते हैं, ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है शायद।
फिर आता है अध्याय दो, बंद दरवाजा। ये बताता है कि हम अक्सर समझा क्यों नहीं पाते कि हमने कोई फैसला क्यों लिया।
हाँ, ये तेज सोचने वाला दिमाग एक बंद कमरे जैसा है, हमें बस नतीजा मिलता है, अंदर क्या हुआ पता नहीं।
जैसे वो टेनिस कोच वाला उदाहरण है, जिक ब्रेडिन, वो खिलाड़ी को देखते ही जान जाते हैं कि ये डबल फॉल्ट करने वाला है, पर पूछो कैसे तो जवाब नहीं।
उनके दिमाग ने वो सूक्ष्म संकेत पकड़ लिए हैं जो शायद चेतन मन देख ही नहीं पाता सालों की प्रैक्टिस से।
और वो जैम वाला एक्सपेरिमेंट भी तो था।
हाँ, लोगों को जैम चक्कर रेट करने को कहा। जब सिर्फ चखा और रेट किया तो उनकी पसंद एक्सपर्ट्स जैसी थी।
हाँ, लेकिन
जब उन्हें अपनी पसंद का कारण बताने को कहा गया तो रेटिंग गड़बड़ा गई। मतलब ज्यादा सोचना या समझाने की कोशिश करना कभी कभी हमारी पहली सच्ची समझ को बिगाड़ देता है।
अजीब बात है, पर यही कहानी पलटती है ना अध्याय 3 में।
हाँ, वॉरन हार्डिंग त्रुटि, ये चेतावनी है थिन स्लाइसिंग का डार्क साइड।
वॉरन हार्डिंग अमेरिका के राष्ट्रपति बने। क्यों बने? क्योंकि वो राष्ट्रपति जैसे दिखते थे।
सही, लंबे, सुंदर, आवाज दमदार, लोगों ने पहली नजर में सोचा हाँ यही है लीडर।
उनका ब्लिंक कह रहा था।
पर नतीजा क्या निकला? इतिहास के सबसे नाकाम राष्ट्रपतियों में से एक। ये दिखाता है कि हमारी पहली छाप कितनी ऊपरी चीजों से, मतलब लुक से प्रभावित हो सकती है।
और यहीं ग्लैडवेल वो इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट IAT की बात करते हैं।
हाँ, IAT वो टेस्ट जो दिखाता है कि हमारे मन में अनजाने में कैसे जुड़ाव बने हुए हैं, जैसे नस्ल और अच्छे बुरे शब्द।
भले ही हम कहें कि हम निष्पक्ष हैं, पर टेस्ट बताता है कि अवचेतन में पूर्वाग्रह छुपे हो सकते हैं।
और ये पूर्वाग्रह हमारे उन तेज फैसलों को खतरनाक तरीके से असर करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, पर क्या मुश्किल और दबाव वाली हालत में ये तेज सोच कभी काम आ सकती है?
इसका जवाब है अध्याय 4 में, पॉल वैन राइपर की बड़ी जीत।
हाँ, वो मिलिट्री वाला अभ्यास। एक रिटायर्ड जनरल थे पॉल वैन राइपर, उनकी टीम के पास कम संसाधन थे।
और सामने वाली टीम के पास ढेर सारा डेटा, कंप्यूटर मॉडल, पूरी प्लानिंग।
पर वैन राइपर ने क्या किया? उन्होंने अपनी टीम से कहा, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करो, तेजी से सोचो, लीक से हटकर चलो, डेटा में मत उलझो।
और नतीजा, उनकी टीम जीत गई। उन्होंने एक बड़ी ताकतवर टीम को हरा दिया।
तो सबक क्या है?
सबक ये कि बहुत ज्यादा जानकारी कभी कभी हमें पंगु बना देती है। मतलब एनालिसिस पैरालिसिस, हम सोचते ही रह जाते हैं, फैसला नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में एक अनुभवी इंसान की सहज समझ ज्यादा काम आ सकती है। कभी कभी कम ही ज्यादा होता है।
अच्छा, अब आते हैं पसंद नापसंद की दुनिया पर। अध्याय 5, कैना की दुविधा।
हाँ, कैना एक म्यूजिशियन। इंडस्ट्री के बड़े लोगों को उसका म्यूजिक बहुत पसंद आया, एकदम नया, अलग।
लेकिन जब आम लोगों के ग्रुप में टेस्ट किया, फोकस ग्रुप में, तो
फेल। लोगों को समझ नहीं आया या पसंद नहीं आया।
तो ग्लैडवेल क्या कहते हैं यहाँ?
वो कहते हैं कि किसी नई अनोखी चीज पर हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर अलग होती है उस राय से जो हम सोच समझ कर बनाते हैं, खासकर जब हमसे कारण पूछा जाए।
और शायद एक्सपर्ट्स का ब्लिंक, जिनका उस फील्ड में अनुभव है, वो ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है नई चीजों के मामले में।
हाँ, शायद जैसे वो न्यू कोक फेल हो गया था, या एरॉन चेयर शुरू में लोगों को अजीब लगी थी पर बाद में हिट हो गई। मार्केट रिसर्च हमेशा सही नहीं होती।
किताब का एक और काफी गंभीर अध्याय है अध्याय 6, ब्रॉन्क्स में 7 सेकंड।
हाँ, अमाडू डायलो की दुखद मौत। न्यूयॉर्क पुलिस ने गोली मार दी थी, बहुत दर्दनाक घटना थी वो।
ग्लैडवेल इसे सिर्फ नस्लवाद से नहीं जोड़ते, बल्कि वो दिखाते हैं कि कैसे बहुत ज्यादा तनाव और डर हमारी दिमागी हालत बिगाड़ देता है।
वो एक टर्म यूज करते हैं, अस्थाई ऑटिज्म जैसा कुछ। मतलब इतने ज्यादा तनाव में हमारी क्षमता लोगों के हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन समझने की, वो कम हो जाती है।
दिमाग जैसे बाहरी दुनिया से कट सजाता है।
हाँ, और शायद पुलिस अधिकारियों ने तनाव में डायलो के इरादों को गलत समझा, उनकी तेज सोच ने उन्हें धोखा दे दिया। ये दिखाता है कि माहौल और हमारी मानसिक स्थिति हमारे ब्लिंक को कितना बदल सकती है।
और आखिर में निष्कर्ष, आंखों से सुनना, ये सब बातों को समेटता है।
ग्लैडविल का मकसद ये नहीं कि हम अपनी गट फीलिंग को भूल जाएं, बल्कि ये कि उससे समझें, उसे मैनेज करें।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो महिला ट्रॉम्बोन वादक एबी कॉनेंट का है।
हाँ, उन्होंने एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए ऑडिशन दिया पर्दे के पीछे से, और वो चुन ली गई क्योंकि उनका हुनर कमाल का था।
लेकिन जब पर्दा हटा और जजों ने देखा कि वो एक महिला है,
तो वो हिचकिचाए, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। पर्दे ने क्या किया था, उसने लिंग की जानकारी हटा दी थी।
मतलब जजों का जो अनजाना पूर्वाग्रह हो सकता था वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ संगीत सुना।
संदेश साफ है, अगर हम फैसले लेने के माहौल को कंट्रोल करें, अप्रासंगिक जानकारी हटा दें जो पूर्वाग्रह पैदा कर सकती है, तो हम अपनी तेज सोच का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या रहीं?
पहली तो यही कि थिन स्लाइसिंग या तेज सोच ये वाकई एक शक्तिशाली चीज है, कोई जादू टोना नहीं, दिमाग का एक स्किल है।
दूसरी, हमारा एडेप्टिव अनकॉन्शियस, वो तेज सोचने वाला हिस्सा, वो बड़ा रहस्यमयी है, बंद दरवाजे के पीछे काम करता है।
तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, पूर्वाग्रह का खतरा। हमारी पहली छाप अक्सर हमारे समाज के बायसेस से भरी होती है और हमें पता भी नहीं चलता।
हाँ, जैसे भारत में हम देखते हैं कपड़ों, भाषा, जाति, इलाके के आधार पर तुरंत राय बना लेना, ये ब्लिंक का खतरनाक पहलू है।
चौथी बात, कभी कभी कम ही ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा डेटा बेहतर नहीं होता, एनालिसिस पैरालिसिस हो सकता है।
पांचवी, एक्सपर्टीज या विशेषज्ञता मायने रखती है। एक अनुभवी डॉक्टर की गट फीलिंग ज्यादा भरोसेमंद है ना, किसी नौसिखिए की नहीं।
बिल्कुल। और छठी, संदर्भ का असर, हमारा मूड, माहौल, तनाव, ये सब हमारी तेज सोच को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं।
और सबसे काम की बात सातवीं, अपनी सहज प्रवृत्ति को मैनेज करना सीखें, जाने कब भरोसा करें, कब रुकें, कब सवाल पूछें।
ग्लैडवेल के कुछ कोट्स तो दिमाग में अटक जाते हैं, जैसे वो कहते हैं, पलक झपकने में उतना ही मूल्य हो सकता है जितना महीनों के तार्किक विश्लेषण में।
हाँ, ये सीधी चुनौती है उस सोच को कि बस धीरे धीरे सोचो, वही सही है।
या ये वाला, हमारा अचेतन एक शक्तिशाली कंप्यूटर है, लेकिन यह एक बंद दरवाजे के पीछे काम करता है। कितनी सही बात है, रहस्य और ताकत दोनों।
और ये सलाह भी अच्छी है, एक अच्छा निर्णयकर्ता बनने के लिए हमें अपनी पहली छाप को संपादित और व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए, मतलब अपनी गट फीलिंग को समझो, परखो।
बिल्कुल, उसे एडिट करो। और आखिर में संतुलन वाली बात, वास्तव में सफल निर्णय लेना जानबूझकर, डेलिबरेट और सहज, इंस्टिंक्टिव सोच के बीच संतुलन पर निर्भर करता है, दोनों चाहिए।
तो इन सब बातों को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ आइडिया?
हाँ, कई जगह, जैसे नौकरी देते वक्त, वो वॉरेन हार्डिंग वाला किस्सा याद है ना?
हाँ।
तो सिर्फ पहली छाप पर ना जाएं।
मतलब कोई कितना कॉन्फिडेंट दिख रहा है या कितना अच्छा बोल रहा है, सिर्फ उस पर फैसला ना लें।
हाँ, बेहतर है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करें, सबसे एक जैसे सवाल पूछें, या हो सके तो ब्लाइंड रिव्यू करें, जैसे रिज्यूमे से नाम वगैरह हटाकर।
और रिश्तों में?
वहां भी किसी को पहली मुलाकात में खारिज ना करें, थोड़ा वक्त दें। लेकिन हाँ, अगर किसी को लेकर लगातार मन में कुछ अजीब सा लगे, कोई रेड फ्लैग दिखे, तो उस गट फीलिंग को इग्नोर भी ना करें।
वो गॉटमैन वाली बात, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना।
हाँ, और खरीदारी, कभी कभी पहली नजर में जो पसंद आ जाए वही बेस्ट होता है, पर ये भी सोचें कि कहीं मार्केटिंग हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही।
और सबसे जरूरी, अपने पूर्वाग्रहों को लेकर जागरूक होना, ये मानना कि हाँ, मेरे अंदर भी बायसेस हो सकते हैं, ये पहला कदम है।
इसके लिए खुद से सवाल पूछना जरूरी है, कोई भी तेज फैसला लेने से पहले एक सेकंड रुकें, पूछें, क्या मुझे इस बारे में अनुभव है, क्या ये मेरा बायस हो सकता है, क्या मैं थका हुआ या तनाव में हूँ, क्या जानकारी काफी है।
ये सवाल हमें सही दिशा दिखा सकते हैं, कब ब्लिंक करें और कब सोचें।
तो कुल मिलाकर ब्लिंक हमें बताती है कि हमारे पास सोचने के दो तरीके हैं, धीमा और तेज, और ये तेज वाला हमारा ब्लिंक अगर सही से इस्तेमाल करें तो बहुत काम का है।
ये किताब हमें अपनी गट फीलिंग की इज्जत करना सिखाती है, पर आंख बंद करके नहीं, उसकी सीमाओं के बारे में भी बताती है। एक समझदार रिश्ता बनाना है अपनी इंट्यूशन के साथ।
मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात वो एनालिसिस पैरालिसिस थी, कि ज्यादा जानकारी हमेशा अच्छी नहीं होती।
हाँ, मेरे लिए भी, हम हमेशा सोचते हैं मोर डेटा बेटर डिसीजन, पर ऐसा है नहीं।
और मुझे वो ब्लाइंड ऑडिशन वाला किस्सा बहुत पसंद आया, वो दिखाता है कि हम सच में सिस्टम बदल सकते हैं पूर्वाग्रह कम करने के लिए।
सही कहा, सोचने पे मजबूर करता है कि जिंदगी में और कहाँ कहाँ हम ऐसे पर्दे लगा सकते हैं ताकि फैसले ज्यादा साफ हों।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।